आज हम प्रेत काम की पुस्तक को आरंभ करना चाहेंगे और इसको हम क्रम से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर से सिखाना चाहता है। और आपको याद होगा कि जब पिछले 12 तारीख को हम ईस्टर के दिन परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे तो उस दिन हमने लूका उसके 24 अध्याय के आखिरी अध्याय पर विचार किया था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और किस प्रकार से घटनाओं पर देखा था जो लूका अपने सुसमाचार में वर्णन करता है। अगर सच पूछा जाए तो प्रेतों काम की पुस्तक को समझने के लिए और आरंभ करने के लिए हमें लूका उसके 24 अध्याय के आखिरी पदों से आरंभ करना अच्छा है। और इसलिए मैं लूका सुसमाचार और उसके 24 अध्याय के 50 पद से पढ़ना आरंभ करूंगा और उसके बाद इसको समाप्त करने बाद मैं प्रेतों काम उसके पहले अध्याय में जाऊंगा। लूका 24 अध्याय 50-53 उसके बाद प्रेतों काम पहला अध्याय। तब वो उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जबकि वे उन्हें आशीष दे रहा था तो वो उनसे अलग हो गया और स्वर्गदूत पर उठा लिया गया। तब उन्होंने उसे प्रणाम किया और वे बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौट आए और लगातार मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। प्रेतों का पहला अध्याय। और तब लूका अपने दूसरी पुस्तक को आरंभ करता है जो प्रेतों काम की पुस्तक है। मैं पहले 5 पद पढ़ूंगा। हे थियोफिलुस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया जब तक कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेतों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर न उठा लिया गया। अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज के विषय में उनसे बातें करता रहा। उसने उन्हें एकत्रित करके ये आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिससे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और हम देखते हैं किस प्रकार से लूका ये वर्णन कर रहा है। लूका ने दो पुस्तकों को लिखा, पहला सुसमाचार लिखा। लूका के बारे में बहुत कुछ आप जानते होंगे। लूका एक वैद्य था, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक नहीं था। बाद में वो पौलुस के संपर्क में आया और अन्य प्रेरितों के संपर्क में आया और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना। विद्वान था, वैद्य था, पौलुस के साथ निरंतर वो रहा, यहाँ तक कि पौलुस के साथ वो बंदीगृह में भी गया रोम में। और कहा जाता है कि उसका परिवार है लेकिन वो विवाहित नहीं था। और अंत में लगभग उसके 85 साल की आयु में यूनान में वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में शहीद हो गया ग्रीस में। उसने बहुत ही सुंदर रीति से इन दो अलग अलग पुस्तकों को लिखा। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो यहाँ थियोफिलुस, लूका जब शुरू करता है वहां पर भी इस व्यक्ति का नाम है। थियोफिलुस एक अच्छा व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है। उसके लिए कहा जाता है कि वो उसका मान है, सम्मान है, उसके पास धन है, उसके पास वैभव है। लेकिन उसने यरूशलेम में जब आया था तो यरूशलेम आने के बाद जो वापस जा रहा था गया तो उसने बहुत कुछ यीशु के बारे में सुना। अब उसके अंदर एक इच्छा तो उत्पन्न हुई कि और कुछ वो जाने यीशु के बारे में। पहले सुसमाचार में लूका थियोफिलुस को लिखते हुए प्रभु यीशु मसीह के 7 मुख्य बातों पर वर्णन करता है। यीशु मसीह का जन्म बहुत विस्तार के साथ लूका ने वर्णन करा, यीशु मसीह का जीवन, यीशु की न केवल जीवन लेकिन यीशु की सेवा जो उसने करी आश्चर्य कर्मों के द्वारा, लोगों को खिलाने द्वारा, बहुत कुछ जीवन देने के द्वारा वर्णन हम पाते हैं। उसकी शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं का वर्णन करता है। चौथी बात, यीशु का बलिदान जो क्रूस पर हुआ उसका बहुत विस्तार के साथ वो वर्णन करता है, उस सारी यातना के बारे में। उसके बाद यीशु का की मृत्यु, दफनाया जाना और तब बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान। अब लूका सुसमाचार इन चीजों को वर्णन करता है लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होगी। अब दूसरे पुस्तक में ये प्रेरितों काम की पुस्तक में ये प्रेरितों का काम है उसका विवरण है। जो प्रेरित शिष्य थे प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य, एक चला गया था, अब 11 बच गए थे और इन 11 शिष्यों के द्वारा बाद में उस 12वें शिष्य का जो रिक्त स्थान उसकी भी पूर्ति होती है पहले अध्याय में हम देखते हैं। अब उनके कार्य को वो विवरण करता है पूरी रीति से और कौन सा कार्य है वो। अब यीशु मसीह देह में नहीं है। लूका के समय में सुसमाचार का समय वो देह में थे और देह में होकर लोगों के सामने काम कर रहे थे। अब उसके बाद वो स्वर्ग पर उठा ले गए हैं। अब उन्होंने अपने जाने के बाद अपने पवित्र आत्मा को दिया अपने वचन के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार, हम आगे चल के देखेंगे। और तब उसके बाद अब जो वो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है उस कार्य का विवरण पूरी रीत से लूका इस प्रेत काम में वर्णन करता है। वो पवित्र आत्मा किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किस प्रकार से उन प्रेतों को इस्तेमाल कर रहा है, किस प्रकार से सुसमाचार फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से सुसमाचार के द्वारा कलीसिया स्थापित हो रही है और कलीसिया विस्तृत हो रही है, उसका विवरण हो रहा है। सो ये कहा जाए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि अगर प्रभु यीशु मसीह जी ना उठे होते तो आज मैं और आप यहाँ ना होते, मसीहत का कोई महत्व ना होता, कलीसिया ना होती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद एक बहुत बड़ा काम हुआ। वो कार्य क्या हुआ? बहुत सारे वचन पूरे हो रहे थे, लेकिन एक और प्रतिज्ञा थी जिसको पूरा था, जो प्रभु यीशु मसीह ने न केवल परमेश्वर पिता ने कहा था लेकिन परमेश्वर पुत्र ने कहा था। परमेश्वर पिता ने बहुत पहले इस बात को प्रतिज्ञा की थी, मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा, उंडे लूंगा तुम्हारे मध्य में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं जा रहा हूँ, यूहन्ना उसके 14 अध्याय में, यूहन्ना उसके 15 अध्याय में, यूहन्ना 16 अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन है। उसने कहा मैं जा रहा हूँ और तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के लोगों के साथ रहने वाले के रूप में दिया कि ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के कार्य पूरे किए जाएं, वो सत्य का आत्मा जो उसने दिया वो उन्हें लग गया। सो प्रेत काम पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो पहले दूसरे पद में लूका लिखते हुए उस उद्देश्य को बताता है जो प्रभु ने पहले किए उनका वर्णन करता है, जिसे यीशु ने आरंभ में उन दिनों तक किया और सिखाया। दो चीजें, दो बातें, दो शब्द है, पहले किया है और सिखाया है, उसके कार्य, उसकी शिक्षा। तो लूका इस बात पर ध्यान देता है, प्रभु यीशु मसीह के कार्य, प्रभु यीशु मसीह के कार्य में बहुत कुछ है, जैसे मैंने कहा जन्म में, आश्चर्यकर्म में, वो सब कुछ है, उसकी शिक्षा है। लेकिन अब आगे चल करके अब वो वर्णन करता है कि जब अपने दुख भोग सत्ता के द्वारा मारा गया, सब कुछ हुआ, वो कहता है तीसरे पद में कि अपने ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिए, और अब 40 दिन का ये होने वाला है और 40 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने वाले हैं, और उसके 10 दिन बाद एक और घटना घटेगी जिसको आगे दूसरे अध्याय में हम देखेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के से लेकर के दूसरे अध्याय की जो घटना 50वें दिन तक की है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जीवित प्रकट किया, दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज के विषय में बातें करता रहा। इन 40 दिनों में वो बार बार लोगों को दिखाई दिया। पहली बात, उसने अपने आप को जीवित प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह हमारा जी उठा परमेश्वर है, क्योंकि वो जी उठा इसलिए हमारे पास आशा है, हम उस परमेश्वर के। लोग कहते हैं आपके चर्च में मूर्ति नहीं, क्यों नहीं मूर्ति है? हम मूर्ति पे मालापण नहीं करते, क्यों नहीं करते? मैं अक्सर पूछता हूँ किसी की मूर्त या किसी की तस्वीर कब बनाई जाती है और कब उस पर मालापण किया जाता है? जब वो व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, तब हम उसकी स्मृति में उसकी तस्वीर बनाते हैं, उसकी मूर्ति बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं और माला अर्पण करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह तो जी उठा है, अगर वो जीवित है तो अब हमें उस पर माला अर्पण करने की जरूरत नहीं है, यही फर्क है। इसीलिए हमारे कलीसियाओं में हम कोई मूर्ति को और कोई चीज को नहीं रखते, हमें यीशु की मूर्ति की जरूरत नहीं है। उसने जीवित होकर अपने आप को प्रकट किया है। लोग झूठ बोल रहे थे, लोग मिथ्या कर रहे थे, लोग बहाने कर रहे थे, लेकिन उसने इस बात को बार बार करके अपने आप को प्रकट किया और दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज के विषय में बातें करता रहा। लोग अभी समझ नहीं रहे थे, अभी भी ये शिष्य जो उसके साथ थे जरूर वो उसके साथ उत्साहित हो रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ आंखें उनकी बंद थी। तब हम 3 पद से लेकर के 5 पद तक हम एक निर्देश को पाते हैं, और वो निर्देश क्या है? 4 पद में उसने उन्हें एकत्रित करके ये आज्ञा दी, ये कमांड है, ये निर्देश है, आज्ञा है, यरूशलेम को ना छोड़ना वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने तक की प्रतीक्षा करना। ये आज्ञा है, तुम यहीं ठहरे रहो, यरूशलेम को मत छोड़ना, तुम्हें प्रतीक्षा करनी है। अब उन्होंने विश्वास किया यीशु के वचन पर और विश्वास के द्वारा उन्होंने आज्ञा का पालन किया। हम विश्वासी कहते हैं अपने आप को, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो एक विश्वासी वो है जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहता है, उसके जीवन से प्रदर्शित होता है हम कितना अधिक अपने कार्य में, अपने व्यवहार में, अपनी बातों में, अपने दिनचर्या में, अपने दूसरी चीजों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के तैयार है। ये शिष्य उसकी आज्ञा पालन करने तैयार थे, क्यों ना केवल ये, लेकिन उसने कहा था कि तुम क्या करना, प्रतीक्षा करना, बार जोना जिसे तुम मुझसे सुना है। यन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु आप से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आप पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला जा रहा था, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। हम बार बार इस बात को देखते हैं, आगे और विस्तार में जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे और यन्ना उसके 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि ये लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार 20 अध्याय और उसके 20 पद से जब वो कह चुका तो उसने अपने हाथ और पंजर दोनों दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और जब वो ये कह चुका तो उसने उन पर फूंका, उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। ये वचन एक ऐसा वचन है आज इसका लोग बहुत इस वचन का दुरुपयोग करते हैं, लोगों के ऊपर फूंकते हैं पवित्र आत्मा तो बाइबल ही नहीं बताती। प्रभु यीशु मसीह का फूंकना एक अलग था, उसका समझना है कारण क्या था। मनुष्य किसी मनुष्य को जीवन प्रदान नहीं कर सकता। जब उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके सातवें पद में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसमें लिखा है और उसने उसमें अपना श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। जब उसने मनुष्य की रचना की तो परमेश्वर ने उसमें अपना श्वास फूंका। यहां पर एक प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह इन शिष्यों से यह कह रहा है लो तुम जीवन पाओ। ये शिष्य कौन थे, इनको जीवन की आवश्यकता थी, ये जरूर प्रभु के साथ रह रहे थे, लेकिन इनको अभी तक उस प्रकार का अनुभव नहीं था, इसीलिए बार बार पीछे हट रहे थे, बार बार इनकार कर रहे थे, संदेह इनके जीवन में उत्पन्न होता, और अभी भी पूरे शिष्य उसमें नहीं थे। बाद में हम चलते आगे पढ़ते हैं तो थोमा बाद में आता है, थोमा कहता है जब तक मैं ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर वहां अपना श्वास उनको फूंक रहा है। तो ये मतलब नहीं कि वो उनको लो फूको और तुम पवित्र आत्मा तो हम भी चपके जड़ करते, नहीं नहीं नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और ये लोग जो फूक करके पवित्र आत्मा देते बाइबल कहीं नहीं बताती, अभी जब दूसरे अध्याय में आएंगे तो हम उसको समझेंगे। अब ये शिष्य ये प्रेत क्या करेंगे, आगे जाकर सुसमाचार का प्रचार करेंगे जिसको हम दूसरे अध्याय में देखते हैं। और जो लोग उनके सुसमाचार पर प्रचार पर विश्वास करके यीशु मसीह के पास आएंगे और वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, प्रभु उनके पापों को क्षमा करेगा, और जब वो पापों को पश्चाताप करेंगे, शिष्य लोग भी उनके लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु ये पाप को क्षमा मांग रहे हैं, आप इनके अपराधों को क्षमा कीजिए। और जो उसके सुसमाचार का तिरस्कार करेंगे वो तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, तुम्हारे इसका ना वो पाप से क्षमा नहीं प्राप्त करेंगे। वो कह रहा है कि जिसके तुम पाप क्षमा करोगे, अर्थात जो तुम्हारे सुसमाचार पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको ग्रहण करेंगे वो पापों से छुटकारा पाएंगे, क्षमा पाएंगे। लेकिन जो उसका तिरस्कार करेंगे, इनकार करेंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे सुसमाचार को, वो पापों में बने रहेंगे। इसको समझना, ये मतलब नहीं है हाँ कि पतरस पोप बन जाएगा और पतरस जो कहेगा वो जाएगा, गलत है, ऐसा नहीं है। केवल पतरस अकेला नहीं था, और भी शिष्य थे, और उसको समझना है। तो कई सारी झूठी शिक्षाएं बाद में ऐसे आरंभ हो गई। आज भी कुछ लोग अपने आप को प्रेरित कहकर कहते हैं, अपने नाम के आगे प्रेरित, वो झूठे हैं, सावधान रहिए। ऐसे लोग ने संदेश को मत सुनिए, बाइबल के अनुसार गलत है। कोई प्रेरित नहीं है, हम सब प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, उसके दास दासी हैं। और अगर कोई भी अपने आप को प्रेरित करके सुसमाचार प्रचार करता है और तुम्हें आशीष मिलेगी ऐसे करता है तो आप उसे सावधान रहिए, क्योंकि यीशु मसीह के जुटने के समय से ही, बल्कि पहले से शुरू हो गया था, बहुत कुछ ऐसे शुरू हो गया जिसको हम देखते चले आते हैं। प्रेरित काम की पुस्तक का जब हम अध्ययन करते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हम देखते चले आते हैं कि एक ओर प्रभु यीशु मसीह का कार्य हम आत्मा का देख रहे हैं, तो दूसरी ओर हम देख रहे हैं किस प्रकार से शैतान भी उन अवरुद्धता को उत्पन्न कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। हमारे बीच में एक भाई आते हैं, भाई मनी ब्लोअर, और वो कई बार शिक्षा देते हैं, और उन्होंने जब एक प्रेरित काम की शिक्षाएं पर ले रहे थे तो उन्होंने कहा था, सिखाया था कि 10 अवरोध हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं, हिंड्रेंसेस हैं जो प्रेरित काम में हम देखते हैं। हम उस पर भी विचार करेंगे आगे चल करके। तो हमें सावधान रहना है, क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय उनको पवित्र आत्मा दिया, ये हम देख रहे थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लो, जिसके तुम अपराध क्षमा करोगे तो उनके अपराध क्षमा किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो हम चौथे पांचवें अध्याय में देख रहे हैं कि रीति प्रभु ने कहा कि तुम यहाँ पर बैठे रहना। प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले भी मैंने बताया कि उसने प्रतिज्ञा दी थी, यूहन्ना उसके 14 अध्याय में उसने कहा था मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा, फिर तुम्हें आऊंगा। उसके आगे चल के बढ़ के कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, उसके आगे चल के कहता है मैं तुम्हें सत्य आत्मा दूंगा, और उसके साथ एक बात और कहता है वो आत्मा तुम में वास करेगा। तीन शब्द इस्तेमाल करें, तुम्हारे साथ होगा। अगर आप यूहन्ना उसके 14 अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यूहन्ना 14 अध्याय में बार बार, जैसे हम 15 पद से पढ़ रहे हैं, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 पद से, यदि तुम मुझसे प्रेम रख करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, वो सदा तुम्हारे साथ रहे। पहली चीज, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरी बात, आगे जाके क्या कहता है, प्रत्येक आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे ना दिखता और ना जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ आता है, तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तब आगे चल करके फिर वो 23 पद में कहता है हम उसके पास आएंगे तब उसके साथ निवास करेंगे। तो जब हम यूहन्ना के इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले उस पवित्र आत्मा के बारे में समझा चुके थे कि ये पवित्र आत्मा किस प्रकार से तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में रहेगा, किस प्रकार से कार्यकारी होगा ताकि तुम परमेश्वर के कार्य को कर सको, जो कार्य इसके बाद तुम्हें करना उसको कर सको। पांच पद तक हम इस निर्देश को या आज्ञा को पाते हैं और शिष्य उसको मानने तैयार है। छठे पद से लेकर 11 पद तक तब हम एक और निर्देश को पाते हैं, बल्कि ना केवल निर्देश है लेकिन अब वो प्रतिज्ञा है कि जब परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देगा तो क्या करेगा। इसको समझना है, पवित्र आत्मा क्या करेगा। मैंने आपसे बताया कि यूहन्ना 20 अध्याय में परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा दिया था, वो जीवन का संकेत था कि तुम्हें जीवन मिले और जीवन के साथ साथ तुम्हें सामर्थ मिले ताकि जाकर तुम सुसमाचार प्रचार करो, और सुसमाचार पर जो कोई विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो तिरस्कार करेगा वो नाश होगा। ये अक्षर और यही परमेश्वर के वचन का संदेश है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। सो हम इस बात को बार बार इस बात को देखते हैं स्पष्ट रीति से। तो प्रभु सहायता करें। 6 पद से लेकर के 11 पद तक में हम इस बात को देख क्या देखते हैं। अतः जब वे एकत्रित हुए तो उससे पूछ लगे, क्या पूछ रहे, प्रश्न क्या पूछ रहे, प्रभु क्या इसी समय इसराइल के राज को पुनः स्थापित कर देगा। एक ही ध्यान उनका है, इस पृथ्वी पे राज। कुछ देर जब वो चीज पूरी नहीं थी, निराश होकर के ये शिष्य छोड़कर चले गए थे, अब धीरे धीरे फिर आ रहे हैं। अब इनको एक आशा जागृत हो रही है, वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ रहे। परमेश्वर सोच रहे ठीक है, कह रहा है मैं तुम्हें ही दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा होगा। वो सोच रहे कि बस ठीक है इसी राज। प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं, वो कहते हैं उसने उनसे कहा उन समयों अथवा कालों का जानना जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है तुम्हारा काम नहीं। पिता ने अपने हाथ में निर्धारित किया है किस समय वो इस पृथ्वी पर अपने सनातन के राज को स्थापित करेगा। ये द्वितीय आगमन से संबंधित है। एक दिन आएगा जब ये पृथ्वी सब कुछ बदल जाएगी, सब कुछ नया होगा और अनंत काल के लिए परमेश्वर का राज स्थापित होगा, वो उसका राज भी है। लेकिन हाँ, परमेश्वर अपने राज को स्थापित करने जा रहा है। जब हम लूका से प्रेरित काम में आते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से लूका में यीशु की सेवा है, लेकिन आप प्रेरित काम में वो यहूदियों से अन्य जाति की ओर जाता है। लूका के पुस्तक में ना केवल ये, लेकिन इसराइल से कलीसिया की ओर जाता है। पुराने उस समय में हम इसराइल इसराइल को देखते हैं, अब प्रेरित काम में हम कलीसिया को देखते हैं। पत्रस शुरू करता है, पत्रस से वो पौलुस की ओर जाता है, पत्रस के बाद पौलुस की सेवा आरंभ हो जाती है, और तब उसके बाद हम कार्य या व्यवस्था को देख के साथ साथ तब देखते हैं किस प्रकार से वो अनुग्रह में ग्रेस में प्रवेश करता है। तो जब हम इस तरीके से देखते हैं तो वो कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहां तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। वो ये नहीं कह रहा तुम सामर्थ पाओगे, अन्य अन्य भाषा को बोलोगे। परमेश्वर का कार्य, उसकी सामर्थ जो है वो परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के सुसमाचार में, इस बात को हमें ध्यान रखना है। इतना कहने पश्चात वो उन्हें देख देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उससे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। तब जबकि वो जा रहा था तो जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे और देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा। एक निश्चयता है, एक आशा है। और ठीक है, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और जाते जाते स्वर्ग पर उठा लिया गया देखते देखते सबके सामने, और वो फिर से आएगा, पुनः वो वापस आएगा। और मेरे प्रियो, ये मेरा और आपका विश्वास है। और जब वो आएगा वो अपने साथ अपने लोगों को लेकर जाएगा। वो स्वर्गदूत उसकी गवाही दे रहे हैं। और मैं उस दिन बता रहा था, उसके जन्म के समय में स्वर्गदूत ने गवाही दी, उसके मृत्यु के समय में स्वर्गदूतों ने गवाही दी, उसके पुनरुत्थान के समय में स्वर्गदूतों ने गवाही दी, उसके जी उठने के बाद स्वर्ग पे जाने के समय में स्वर्गदूतों ने गवाही दी। ये स्वर्गदूत गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। उन्होंने कहा कि जैसे वो गया है, उठा लिया गया है, वैसे ही फिर से आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय में, फिलिप्पियों के 3 अध्याय में और परमेश्वर के कई वचनों में पौलुस बार बार प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में वर्णन करता है। तो हमारी आशा खत्म नहीं है। तो पहले 11 पद तक हम दो मुख्य बातों को देखते हैं। अब किस प्रकार से ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य की तैयारी है पूरी रीति से। शिष्यों को प्रतीक्षा करने के लिए निर्देश दिया जाना है और शिष्य को पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा का दिया जाना है। ये दो मुख्य बातें हैं कि उनको परमेश्वर के सामने प्रतीक्षा करनी है, धीरज धरना है, उसकी बाट जोनी है कि परमेश्वर ताकि अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सके। पुराने नियम में या नए नियम में परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञा है और एक विश्वासी होने के नाते ये अच्छी बात है कि मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को क्लेम करें, पर समझ के साथ। हम कई बार एक एक पद लेकर उनकी प्रतिज्ञाओं को क्लेम करते हैं, पर समझना है ना कि संदर्भ में कहां पर कैसे किस बातों को हमें देखना है, आगे पीछे उसको देखना है। लेकिन प्रतिज्ञाओं पर हमें विश्वास करना, क्योंकि पौलुस कहता है परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं वो हां और आमीन के साथ हैं। और हमें प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है, प्रतिज्ञाओं को याद करना है और प्रतिज्ञाओं को अपनी प्राप्तता में क्लेम करना है अगर परमेश्वर का वचन सच्चा है। और इसीलिए हम बार बार पुराने नियम में देखते हैं, यहां तक यीशु मसीह ने भी अपने पिता से कहता, पिता तूने ऐसा कहा, खुद पुत्र अपने पिता से कहता तूने ऐसा कहा, और वो बात को इस पिता को स्पर्श दिला के। तो हम किसी मनुष्य की बात को नहीं, इस परमेश्वर की बात को, परमेश्वर हाँ, लेकिन हर एक प्रतिज्ञा के साथ परमेश्वर की आज्ञा है। अब यहाँ पर स्पष्ट आज्ञा थी कि तुम्हें वेद प्रतिष्ठा करनी है, तुम्हें बाट जोड़नी है, तुम्हें उस आज्ञा का पालन करना है। अगर वे उस आज्ञा का पालन नहीं करते तो प्रतिज्ञा पूरा नहीं होती। और इसलिए हर प्रतिज्ञा के साथ आज्ञा भी है, जुड़ी हुई है। पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएंगी। तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएंगी, कब मिल जाएंगी? पहले तुमको उसके राज और धन तक। अब सारी वस्तु में मतलब नहीं, आपको जहाज भी मिल जाएगा, हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, आपको बड़ा बिल्डिंग भी मिल जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो जो आप परमेश्वर आपके लिए उचित समझता है वो मिल जाएगा। और सबसे बड़ी आशीष जो है, वो आशीष केवल ये नहीं, लोग आशीष 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 की बात करते, सबसे बड़ी आशीष पापों की क्षमा की आशीष है। सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की संतान बनकर जीवन को व्यतीत करने की आशीष है। सबसे बड़ी आशीष उद्धार के अनुभव की आशीष है। सबसे बड़ी आशीष चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे क्लेश हो, उसमें बने रहने की आशीष है। उसकी अधीनता को स्वीकार करने की आशीष, उसके साथ जीवन को व्यतीत करने की आशीष, उस पर निर्भर होने की आशीष, सबसे बड़ी आशीष। अगर हम उस पर निर्भर नहीं है, अगर हम उसकी आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, अगर हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अगर हमें उद्धार का अनुभव नहीं है, हमें पापों की क्षमा का अनुभव है, सारे बहुत सारे अन्य जाति हैं संसार में जो जिनके पास दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनके पास वो आशा नहीं जो आशा मेरे और आपके पास है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार बात कहता है। तो दो बातें हैं। तो दूसरी बात ये, प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये हमारे लिए निश्चित है। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के मुख से निकली हुई एक बातें भी बिना पूरे हुए एक बिंदु पूरा हुए ना टलेगा। और उसमें से हम ना तो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उसके उद्देश्य को समझना है। पवित्र आत्मा के कार्य को हम आगे चल के देखेंगे, समझेंगे क्या है। लेकिन ये जरूर है, वो कह रहा है तुम सामर्थ पाओगे। कौन सामर्थ पाओगे? वो सामर्थ जो परमेश्वर की, पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा टेम्पररी दिया जाता था, अल्पकालिक होता था। दाऊद इसलिए प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर तू अपने आत्मा को मुझसे अलग मत करना, भजन संहिता 51 में। शाऊल के बारे में पाते हैं हम, शिमशोन के बारे में पाते हैं हम, कितनाइयों के बारे में पाते हैं जिनको परमेश्वर ने आत्मा दिया और उसे ले लिया। क्यों? वो टेम्पररी था। पर अब पुत्र नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे और आपको, हर विश्वास करने वालों को, अपना पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी गवाही क्या है? क्या केवल अन्य भाषा बोलना? यदि किसी को वरदान है, ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन अगर कोई कहता केवल वो एक पहचान है, नहीं, यहाँ पर कहता तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ क्या करेगी? सामर्थ मुझे एक पवित्र जीवन को व्यतीत करने में मदद करेगी। इसीलिए यूहन्ना उसको 16 अध्याय में, और पवित्र आत्मा का काम यह है कि वो तुमको पाप से काल करेगा। पवित्र आत्मा का कार्य सबसे बड़ा पाप से काल करना, निरुत्तर बनाना, पवित्र बनाना, परमेश्वर के साथ जीवन को व्यतीत करने में चलाना, यह पवित्र आत्मा का। दूसरी बात, वो सामर्थ जो पाप पर विजय प्रदान करती है, वो सामर्थ जो परीक्षा पर विजय प्रदान करती है, वो सामर्थ जो परमेश्वर की गवाह बनाती है, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूं, आप किसी परिस्थिति में, अस्पताल में, बीमारी में, दुख में, छल में, कहीं भी है, किसी भी झूठे दोष में, कुछ भी हो, आप वहां प्रभु की गवाह बने रहे। कई बार लोगों को ऐसी ऐसी जगह खड़ा होना पड़ता है जहां पर उनके ऊपर दूसरा रोपण लगाया जाता है, झूठा दोष लगाया जाता है, फिर भी वो परमेश्वर के गवाह बनकर खड़े रहते हैं। कौन करता है? परमेश्वर का सामर्थ, जो आत्मा परमेश्वर ने उनको दिया है। ये बड़ी चीज देखकर जा रहा है वो। सो प्रेरित काम में इस अध्याय में ये मुख्य बात जो प्रभु मुझे और आपको देने तैयार है। और इसलिए कह रहा है, तब क्या होगा? तुम सामर्थ पाओगे यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। और हम इस बात को देखते हैं, पहले अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक यरूशलेम की कहानी देखते हैं, फिर उसके बाद 13 अध्याय से हम यहूदा की कहानी को देखते हैं, उसके बाद हम 15 अध्याय से सामरिया की कहानी देखते हैं, और फिर उसके बाद हम रोम और दुनिया के छोर छोर तक कैसे सुसमाचार फैलता चला जा रहा है। तुम मेरे गवाह होगे, अर्थात तुम मेरे सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाओगे। ये है सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह का गवाह बना रही है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करा रही है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की साक्षी दिला रही है। यीशु जी उठा है, हमने उसको देखा है। तो ये जब हम बात करते हैं पवित्र आत्मा बात, तो पवित्र आत्मा, और तब वो कह रहा है कि तुम पृथ्वी तक मेरे साक्षी होगे। प्रभु ने मुझे और आपको अपना गवाह बनाकर चुना है, सबसे बड़ी बात है। हम चाहे किसी परिस्थिति में क्यों ना, हम कहीं क्यों ना, प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो आज कितने जगह पर जब प्रभु को जान जाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर है, लेकिन वहां पर भी वो अपने गवाही को चूकते नहीं। मैं एक भाई को जानता हूँ, प्रभु ने उसको एक अच्छे पद पर रखा है, दिल्ली में एक अच्छे ऑफिस में, बड़े ऑफिस में काम करता है, लेकिन जैसे वो ऑफिस में जाता है, सारे कैलेंडर्स हैं, बाइबल वर्सेस, सब कुछ, सबसे पहले घुटने पर दुआ करता है और तब अपने ऑफिस के काम शुरू करता है, और सारा ऑफिस उसको जानता है, वो एक अच्छा गवाह बनकर। कौन काम? वो अन्य भाषा नहीं बोलता, कुछ और नहीं करता, बहुत सारे आशीर्वाद भी करता, लेकिन एक गवाह बना हुआ है। मेरे प्रभु में समझना परमेश्वर वचन की सच्चाई को। प्रभु सहायता करे कि उसके जी उठने की सामर्थ मेरे और आपके अंदर इस तरह से हो कि पवित्र आत्मा मुझे और आपको पवित्र बनाए। प्रश्न है कितना अधिक मेरे और आपके अंदर पवित्रता की लालसा होती है। वो झूठ, छल, धोखा, कपट, स्वार्थ, हट्टीपन, वो सारी चीज, छल कितना अधिक उससे मैं और आप सचेत रहते हैं, या हम उसको बहुत हल्का ले लेते हैं। कई बार हम प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन सारी चीजों को बड़े हल्के में ले लेते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं और उनके जीवन को देखकर दुख होता है, झूठ छल धोखा को आसानी से लेते हैं। गलत बात है, हमें डरना है, क्योंकि जब प्रभु आएगा तो न केवल हमें ले जाएगा, ना केवल वहां पर आशा होगी, लेकिन आशा के साथ साथ एक और चीज होगी, वो मेरे और आपके लिए चुनौती भी होगी, कि वो केवल मुझे और आपको अनंत काल के लिए अपने साथ ही रखेगा, लेकिन अगर हम उसके लायक नहीं निकलेंगे तो दंड भी देगा। तो हमारे पास ग्रेस है, ग्रेस के साथ साथ दंड भी है, हमें देखना है, उसका जजमेंट भी है। प्रभु सहायता करें। आनल संडे को हम 12 पद से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सो मुख्य बात, अब पवित्र आत्मा का काम एक नई रीति से बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह चले गए, पवित्र आत्मा ने किस प्रकार से अपने कार्य को आरंभ किया। आज से लगभग 2020 साल पहले प्रभु ने अपने कार्य को अपने आत्मा द्वारा इस पृथ्वी पर, इस संसार में करा है। अपने शिष्य को उसने एक नया जीवन प्रदान किया है, वो अधिकार और सामर्थ्य दिया है, जिस सामर्थ्य में उसके सुसमाचार के गवाह बन गए, सेवक बन गए, प्रचारक बन गए। और मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो उसके पास ना केवल नाश नहीं होता, बचाया जाता है, लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए वो यीशु का एक अच्छा गवाह बन जाता है। आप क्या यीशु के गवाह बनने तैयार हैं? आपको प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु का पवित्र आत्मा आपके अंदर सामर्थ्य प्रदान करे, निर्बुद्धता के साथ नहीं पर बुद्धिमानता के साथ, जोश होश के साथ, दूसरों का अपमान ना करें, दूसरों का निरादर ना करें, दूसरों को ठट्टों में नोड़ाए, किसी को तुच्छ ना जाने, परंतु प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा रखे। प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु आपको सामर्थ्य प्रदान, प्रभु आपको अच्छा गवाह बनाए। आपकी कार्य आपकी बात यहाँ पर हम देखते हैं यीशु के बाद कार्य और वचन, आपकी कार्य प्रभु की महिमा के लिए हो सके, आपके वचन प्रभु की महिमा के लिए हो सके, लोग आपके वचन के द्वारा भी इस सचमुच में उस सच्चाई को पवित्रता को जान सके। प्रभु दया करें, परमेश्वर सहायता करें और इस वचन पर आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।